ओम शांति। देखिए, गृहस्थ को आश्रम कहा गया है। जितने भी आश्रम हैं, उन सभी आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम को माना गया है। लेकिन गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ तब है जब उसमें आचरण आश्रम जैसा हो। ब्रह्मचर्य पालना का जो महत्ता है वो हमारे शास्त्रों में वर्णित की गई है, और जो हमारी परंपराएं रही हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों ने, शास्त्रों ने जो हमें अनुमति दी है कि ब्रह्मचर्य पालन गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जब हम करते हैं तब वो गृहस्थ आश्रम कहलाता है। क्योंकि जो विकार हैं वो विकार ही मनुष्य को दुखी करने वाले हैं, शारीरिक और मानसिक शक्तियों को क्षीण करने वाले हैं। इसलिए गृहस्थ में रहते हुए हमें ब्रह्मचर्य की पालना की आज्ञा दी जाती है। इससे हमारी शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति समाप्त होती है। और वर्तमान समय परमात्मा की ये आज्ञा है कि बच्चे, पवित्रता माना ब्रह्मचर्य पालन से ही तुम्हारी आत्मा सशक्त बनेगी और तुम्हारा शरीर सशक्त बनेगा। आज संसार के अंदर जो भी समस्याएं हैं उसका मूल कारण ब्रह्मचर्य का खंडन है, काम वासना की अधिकता है, जिसके कारण आज हम कह सकते हैं कि काम की अग्नि में पूरा संसार आज जल रहा है। तो गृहस्थ में रहते हुए पहले भी हमारे संतान उत्पत्ति तो पहले भी होती थी, लेकिन सिर्फ पहले संतान उत्पत्ति के लिए ही जीवन में विषय वासना को लाते थे। ये द्वापर से शुरू हुआ है, उससे पूर्व में तो विषय वासनाएं थी नहीं जीवन के अंदर। सत्ययुग त्रेता युग में हम कोर्स के दौरान आपको बताएंगे कि सत्ययुग त्रेता युग में भी वहां पर अविद्या थी, काम वासना की अविद्या थी। वहां योग शक्ति से, ये अर्थात स्वतः ही बच्चे वहां पर जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ में सेल्फ फर्टाइल सेल्स होती हैं, उससे स्वतः ही जन्म लेता है बच्चा सत्ययुग और त्रेता युग में। जब आत्मा की और शरीर की शक्ति क्षीण होने लगती है द्वापर युग के बाद, तब ये विषय वासनाएं मनुष्य के मन में घर करती हैं और धीरे धीरे संसार का पतन होता है। तो जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, पतित और पावन शब्द, तो पतित मनुष्य कैसे बनता है? विषय वासनाओं से ही पतित बनता है, और परमात्मा आकर के हमको पावन बनाते हैं। और ये समय है जब परमात्मा आके आज्ञा करते हैं कि बच्चे अब ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो, अपनी वृत्तियों में शुद्धता पवित्रता लाओ, मनसा वाचा कर्मणा तीनों में आपको पवित्रता लानी है, उसको हम श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य कहते हैं। और इस समय हमें परमात्मा जो ज्ञान देते हैं, सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान। जब हम आत्मज्ञान को समझ लेते हैं और सोल कॉन्सियस में यानी आत्म स्मृति में रहते हैं, आत्म भान में रहते हैं, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, अपने मूल स्वरूप में आत्मा पवित्र है, तो जब हम उसकी स्मृति में रहते हैं, अभ्यास करते हैं, इसके साथ परम पवित्र परमात्मा को भी याद करते हैं, तो हमारे अंदर ब्रह्मचर्य की धारणा बहुत सहज हो जाती है। इसलिए कहते हैं ना, शिव ने कामारी को भस्म किया। तो वास्तव में शिव ने तीसरा नेत्र किसका खोला? शिव ने तीसरा नेत्र हम बच्चों का खोलते हैं। तीसरा नेत्र माना आत्मज्ञान। आत्मा का ज्ञान जब हो जाता है उसी को हम तीसरा नेत्र कहते हैं, क्योंकि आत्मा भ्रकुटी के मध्य विराजमान होती है। हमारी दोनों नेत्रों के बीच में जो भ्रकुटी है वहां पर हम तिलक लगाते हैं, तो हमारा तीसरा नेत्र वहां पर है, यानी आत्मा वहां निवास करती है। और परमात्मा जब आकर के ज्ञान देते हैं हमें, तो हमें उस तीसरे नेत्र का ज्ञान देते हैं, तो हमारे अंदर जो काम वासना है वो समाप्त हो जाती है। और ये हमने प्रैक्टिकल उदाहरण, प्रैक्टिकल अनुभव किया है, क्योंकि वैसे असंभव है दुनिया के अंदर गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचर्य पालन करना, लेकिन अगर गृहस्थ में रहते हुए हम ईश्वरीय स्मृति में रहते हुए हम ये प्रतिज्ञा करते हैं तो बहुत ही सहज होता है। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है और हमारे संस्था से जितने भी भाई बहन हैं मूल रूप से जुड़े हैं, ठीक प्रकार से जुड़े हैं, तो उनका लगभग 8-10 लाख की संख्या है जो कि जीवन में अपने ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं। हमारी बहनें हैं, युवा बहनें, युवा भाई हैं, गृहस्थी हैं, 80% तो गृहस्थ वाले ही ब्रह्म कुमारी सेंटर से जुड़े हैं, 80-85%। तो संभव हुआ है कब? लेकिन जब हमने अपने आप को आत्मा समझा और परमात्मा की आज्ञा समझकर और परमात्मा को अनुभव किया, परमात्मा का साथ अनुभव किया, तब ये संभव होता है। तो असंभव नहीं है। आप अगर प्रतिज्ञा करेंगे और उसका भविष्य में फायदा है कि हम अगर अभी पवित्र बनेंगे ब्रह्मचर्य व्रत का, खान पान की शुद्धि का, तो हमें सत्ययुग त्रेता युग में जन्म लेने का अधिकार तभी मिल सकता है। और इस ज्ञान को आप अच्छी प्रकार से समझेंगे तो आपके और फंडामेंटल क्लियर होंगे और आप अगर संकल्प करते हैं तो परमात्मा उस संकल्प में हमारी मदद करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। Om Shanti.